आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है और आज हम अध्याय 7 संघवाद पर आगे चर्चा करेंगे। और आज हम जानेंगे कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें किस तरीके के तनाव आते हैं और किस तरीके से राज्य और केंद्र में कुछ विवाद चलते हैं और न्यायपालिका उन विवादों का निपटारा किस तरीके से करती है। इसको समझें उससे पहले थोड़ा सा पुराना जो भी हमने सीखा संघवाद के बारे में उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि संघवाद एक तरीके की सरकार का प्रकार होता है। संघवाद में जहां भी संघवाद होगा वहां पर एक ही देश में विभिन्न स्तरों की सरकार होगी। भारत में संघवाद है जहां पर दो स्तरों की सरकार मुख्यतः काम कर रही है, एक ही केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार। केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियां हैं जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है। संविधान में इन शक्तियों का वर्णन सूचियों के रूप में किया गया है और ये 3 सूचियां हैं जिसे हम अंग्रेजी में लिस्ट भी कहते हैं। पहली है संघ सूची, इसमें केंद्र की शक्तियों को लिखा गया है। फिर है राज्य सूची, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य किन वस्तुओं पर, किन बातों पर कानून बना सकता है उसका निर्धारण किया है। तीसरा है समवर्ती सूची, और ये समवर्ती होती है, इसमें ये राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं जिनका बारे में हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है, और अगर इस तरीके के कोई मुद्दे आते हैं जिन पर कानून बनाना चाहिए तो उसकी शक्ति केंद्र को दी गई है। साथ में हमने ये भी जाना कि हमारे देश में एक सशक्त केंद्र का निर्माण किया गया संविधान निर्माताओं द्वारा, क्योंकि उनको मानना था कि देश में इतनी विविधता है, विभिन्नता है, कि देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक सशक्त केंद्र की अत्यंत ही आवश्यकता है। हमने केंद्र की शक्तियों को भी जाना, खासकर आपातकालीन शक्ति है केंद्र के पास। जब आपातकाल लगता है देश में तो राज्य की जितनी भी कानून बनाने की क्षमता है वह केंद्र के हाथ में चली जाती है। राज्यपाल को भी केंद्र ही नियुक्त करता है, प्रशासनिक सेवकों को भी केंद्र ही नियुक्त करता है। अब ये जब हम देख रहे हैं कि केंद्र के पास इतनी शक्तियां हैं तो स्वाभाविक है कि राज्य इसमें कुछ तो विवाद उनके तरह से खड़ा भी हो सकता है और केंद्र और राज्य का ये जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो आज हम इसी को समझेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक खोल लें और पेज नंबर 163 पर आप आ जाएं, जहां से आज हम शुरुआत करेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। तो ये हेडिंग है आपकी, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। तो देखिए, हमने ये तो जान लिया कि केंद्र के पास बहुत शक्तियां हैं, और ये भी बात है कि राज्य जो हमारे देश में बने हैं वो अपनी जनरली आप देखिए भाषाई पहचान और क्षेत्रीय पहचान पर बने हैं। तो आप कर्नाटक में देखेंगे कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, और इस तरीके से राज्यों को उनकी पहचान दी गई है। तो पहचान उन्हें भी दी गई है राज्यों को, पर फिर भी केंद्र को थोड़ी सी शक्तियां ज्यादा हैं। तो जब किसी राज्य को एक बार उसकी पहचान मिल जाती है तो स्वाभाविक है कि पूरे देश के शासन में और अपने क्षेत्र में राज्यों की मांग उठती है कि हमें भी ज्यादा भूमिका, ज्यादा शक्ति मिले। तो इसी कारण जो राज्य हैं ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं और साथ में वो स्वायत्तता की भी मांग करने लगते हैं। स्वायत्तता मतलब वो एक तरीके से फ्रीडम चाहते हैं, वो जो भी अपने कार्य करना चाहते हैं। तो यही कारण होते हैं कि जिससे केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष या विवाद का जन्म होता है। ये विवाद केंद्र और राज्य के बीच में भी हो सकता है और दो राज्यों के बीच में भी हो सकता है। तो जब भी ये कानूनी विवाद होते हैं तो इसका समाधान हमारी कोर्ट, हमारी न्यायपालिका करती है। लेकिन जो स्वायत्तता की मांग है, स्वायत्तता एक थोड़ा सा अजीब सा राजनीतिक मसला है। तो यहाँ पर स्वायत्तता कभी कभी गलत अर्थ भी ले जाती है एक तरीके से। कभी कभी ये भी मान लिया जाता है कि शायद ये अपने आप को पूर्णतः देश की जो संस्कृति है उससे अलग करना चाहते हैं। कभी कभी इस तरीके का भी एक विचार आ जाता है। तो ये जो मुद्दा है स्वायत्तता का, वो एक राजनीतिक सवाल बन जाता है। तो ये एक संविधान में जब हम इनकी शक्तियों की बात करते हैं दोनों की, तो स्वायत्तता एक मुद्दा है जो विवादों में अक्सर रहता है। तो अब बात करते हैं केंद्र और राज्य के संबंध कहाँ ऐसे हैं कि जो इनमें विवाद होता है। तो देखिए, संविधान ने तो ढांचा बना के दे दिया कि केंद्र के पास ये शक्ति है, राज्य के पास ये शक्ति है, वो लिखा गया है, बताया गया है। परंतु जब वास्तविकता की बात आती है तो ये जो राजनीति है ये डिफरेंट है, ये सिनारियो, ये जो परिदृश्य वो चेंज होता रहता है। और इसी तरह जो भारतीय संघवाद है वो भी एक राजनीतिक प्रक्रिया से निकल रहा है। ये जो प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया, वो परिवर्तनशील है। आप देखिए, पहले एक पार्टी का वर्चस्व था, फिर कई बार बहुदल आ गए, फिर द्विपार्टी हो गई। ये देखिए, सिस्टम जो है राजनीति का वो चेंज होता है। और इसी चेंज होने के सिस्टम को, इसी प्रकृति का हमारे संघवाद पर बहुत ही गहरा असर हुआ है। तो इसको समझते हैं हम, जब हमें आजादी मिली जहां से हमारा संविधान लागू हुआ उस माध्यम से शुरू करते हैं। तो ये बात है 1950, ठीक है। तो 1950-1960 में हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और उस समय जो केंद्र था और राज्य, वहां सिर्फ एक ही पार्टी का वर्चस्व था, वो है कांग्रेस पार्टी। और ये जो राज्य थे उनको कोई ज्यादा, उनकी कोई मांग नहीं होती थी, बहुत ही शांतिपूर्ण रहते थे, एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी का वर्चस्व था। तो बस उनको कुछ वित्तीय अनुदान मिल जाए विकास के लिए, और उतना ही उनकी मांग होती थी। बाकी जो संबंध थे राज्य और केंद्र के, वो बहुत ही शांतिपूर्ण और नॉर्मल थे। कारण इसका था, एक पार्टी का सिस्टम था, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये राज्य कहते थे कि ठीक है, नए राज्य का गठन किया जाए और हमें वित्तीय अनुदान मिलता रहे, यही इनकी मांग थी। पर 1960 के बाद थोड़ा सा ये चेंज आया, क्योंकि राज्यों में विरोधी दल आ गए। अब जो एक पार्टी थी जो कांग्रेस, उसके वर्चस्व में थोड़ी सी कमी आई। और जब ये विरोधी दल आए तो इन्होंने राज्यों की और शक्ति मांगने का इन्होंने इच्छा जताई। तो इसका कारण ये था कि ये जो दल थे ये एक अलग सोच के थे, और राज्यों की सरकारों ने केंद्र की जो कांग्रेसी सरकार द्वारा जो भी किए गए हस्तक्षेप थे उनका विरोध शुरू किया। क्योंकि केंद्र में अभी भी 1960 में भी कांग्रेस की सरकार थी, परंतु चेंज, बदलाव कहाँ आया? बदलाव राज्यों में आया। तो जो ये राज्य थे वो तो मांग कर ही रहे थे, पर जो ये कांग्रेस थी उसको भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ इन दूसरे दलों से तालमेल बिठाने में। दोनों ही तरफ स्थिति थोड़ी सी गंभीर हुई, पर ये एक अजीब सा संदर्भ था, एक अजीब सी स्थिति थी जहां पर अब राज्य और केंद्र में विवाद छिड़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे 1990 का जब दशक शुरू हुआ, तब तक कांग्रेस का वर्चस्व ऑलमोस्ट हर राज्य से खत्म होने लगा, और इवन केंद्र में भी गठबंधन की सरकारें आने लगी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो क्षेत्रीय दल थे जो राज्यों में भी सत्तारूढ़ थे, अब धीरे धीरे ये केंद्र में भी ये आ गए। इससे इन राज्यों का राजनीतिक कद भी बढ़ गया, और ये एक नए संघवाद की शुरुआत हुई। और यहाँ पर जो राज्य थे वो अब ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने लगे। तो मुख्य कारण ये रहा कि हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य बदला, एक पार्टी से हम बहुपार्टी की तरफ जो गए, उससे राज्यों को भी लगा कि हमारी कुछ अलग स्वायत्तता है, हमारी कुछ शक्तियां हैं, उसको हमें वापस चाहिए, उसका हम पालन करना चाहते हैं, हम उसका उपयोग करना चाहते हैं। अब बात हुई स्वायत्तता की। तो कई राज्य हैं जो केंद्र से के मुकाबला करते हैं और कहते हैं कि हमें ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो राज्य हैं और जो दल हैं जो स्वायत्तता की बात करते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग भी हैं स्वायत्तता से। स्वायत्तता से कभी कभी इसका एक तो अर्थ ये होता है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए और राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाए। ये जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा TMC है, पंजाब में अकाली दल है, ये सब क्षेत्रीय दल है, तमिलनाडु में द्रमुक पार्टी है, तो इनका कहना था कि हमें ज्यादा शक्ति दी जाए। तो ये एक स्वायत्तता की मांग है। दूसरी मांग जो वो है कि हमें वित्तीय संसाधन सारे हमारे हाथ में होने चाहिए, वित्तीय स्वायत्तता चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि देखिए बजट है और जो भी आर्थिक प्रबंध है वो सब केंद्र करता है। तो राज्यों का मानना था कि हमें जो संसाधन हमारे हैं, हम अपनी आय कमाने के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद हुआ और खासकर पश्चिम बंगाल में एक बार जब वामपंथी की सरकार थी, वामपंथी मतलब कम्युनिस्ट, तो उन्होंने तो एक नया दस्तावेज ही बना दिया कि केंद्र और राज्य के संबंध ऐसे होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए जो संविधान में लिखे गए। तो इस मामले में भी जो वित्तीय अधिकार है उसमें काफी कुछ विवाद खड़े किए और तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई। वित्त के बाद आता है तीसरा मामला जहां विवाद होता है, वो है प्रशासकीय शक्तियां। हम जानते हैं कि जो प्रशासनिक तंत्र है, जो हमारे नौकरशाह हैं IAS IPS, वो सब किसके अंतर्गत काम करते हैं, केंद्रीय नियंत्रण में काम करते हैं। होते वो राज्य में है परंतु राज्य के लिए वो उत्तरदायी नहीं है, राज्य उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसके बाद जो एक मुद्दा है वो है सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दा। कुछ राज्य हैं जिनको लगता है कि केंद्र हमारे ऊपर हिंदी भाषा को थोप रहा है, खासकर तमिलनाडु एक इसका उदाहरण है, जहां पर कुछ एंटी हिंदी भाषी का जो राज्य उसका बहुत ही ज्यादा वहां विरोध होता है, आंदोलन तक भी वहां हुए हैं और उनका कहना है कि आप हमारे जो ये भाषाई जो विरोध है उसकी भी एक राजनीति वहां पर हुई है। तो कुछ राज्य हैं उनको ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, तो ये भी भाषा एक बहुत बड़ा कारण रहा है एक विवाद का। ये तो छोटे छोटे विवाद हैं, पर जो सबसे मुख्य कारण है इस विवाद का राज्य और केंद्र के बीच में, वो है राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। देखिए तो राज्यपाल है, हम जानते हैं उसकी नियुक्ति केंद्र करता है राज्य में, और ये जो राज्य है उनको लगता है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, अतः ये राज्य का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का एक तरीके से प्रतिनिधि, और राज्यों का मानना है कि राज्यपाल हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तो जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल होंगे तो डेफिनेटली राज्यपाल की भूमिका बहुत विवादास्पद होती है। आप अभी रिसेंट देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में TMC पार्टी सत्ता में है और राज्यपाल वहां केंद्र के द्वारा भेजे गए, केंद्र में NDA की सरकार है, तो बहुत ज्यादा वहां गर्मा गर्मी चल रही है, बहस चल रही है। अगर आपको समय मिलता है तो इस पर थोड़ी जानकारी इकट्ठी करें। आप समाचार के द्वारा भी सुनेंगे तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका राज्यपाल से कुछ खटास थोड़ा अनबन चलती रहती है। तो ये जब से संविधान लागू हुआ है, जब नेहरू जी भी हमारे प्रधानमंत्री थे, तब से ही ये विवाद चल रहा है राज्यपाल को लेकर। तो केंद्र राज्य के जो ये संबंध है ये बहुत ही विवादास्पद तब होते हैं जब राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते हैं। तो ये राज्य के और केंद्र के संबंध कैसे रहे, इसके लिए 1983 में केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया, 1983 में एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का काम था कि वो केंद्र और राज्य के जो भी आपसी विवाद हैं उस पे पड़ताल करे, उसको सॉल्व करे। तो केंद्र के और राज्य के मुद्दों पर ये जो सरकारिया आयोग है, इसने 1998 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। अब एक और मुद्दा है जो
केंद्र और राज्य में विवाद पैदा करता है वो है राज्यपाल की शक्ति, जो अनुच्छेद 356 से रिलेटेड है। देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल दिया है 356, इसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जब राज्य में अगर किसी राज्यपाल को लगता है कि जो भी सरकार है राज्य में वो ढंग से काम नहीं कर रही है, वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। राष्ट्रपति अगर शासन लग गया, अर्थात वो राज्य की जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास चली जाएंगी, वहां पर अब केंद्र का जो कानून है वो चलने लगता है, जो भी केंद्र में सरकार है उसका वहां वर्चस्व हो जाता है। कहने कोई राष्ट्रपति शासन है, टर्म्स में आप समझिए तो ये राष्ट्रपति शासन है, परंतु इसे केंद्र की जो संसद होती है वो लागू करती है। अगर आप संविधान के इस उपबंध को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अगर राज्यपाल को ऐसी स्थिति लगे कि यहाँ पर संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जो संघ की सरकार है वो राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है और इसकी स्वीकृति संसद की मिलने के बाद राष्ट्रपति इस पर साइन करते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं। ये जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो इसका मतलब है 3 साल तक केंद्र की सत्ता एक राज्य पर हुकूमत कर सकती है और ये राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, उसको निलंबित कर सकती है। तो ये जो पावर है इसका कई बार गलत इस्तेमाल भी किया गया है केंद्र द्वारा, और कई बार तो ये हुआ है कि राज्य सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, परंतु उसको निलंबित कर दिया गया। और ये ऐसा नहीं कि मुद्दे अभी कोई रिसेंट टाइम में हुए हैं, 1959 क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ 1950 और उसके 9 साल बाद ही केरल में चुनी हुई सरकार को, बहुमत प्राप्त सरकार को, बिना उसका कोई ना उसकी परीक्षा हुई, कुछ नहीं हुआ और उसको सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मामला गया और जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के कुछ निर्णय संवैधानिक होने चाहिए, परंतु इस पर इतनी कार्यवाही नहीं हो सकती। धीरे धीरे समय के साथ आप देखेंगे कि 1967 के बाद गैर कांग्रेसी सरकारें आने लगी राज्यों में, तब उसके बाद ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 356 है इसका दुरुपयोग शुरू हो गया केंद्र द्वारा, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें थी, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब केंद्र ने कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया और उनको हटा दिया और ये जो 356 है उसका दुरुपयोग शुरू हो गया। एक उदाहरण है आपके लिए कि 1980 में आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकारें थी, उनको बहुमत प्राप्त था, फिर भी जो केंद्र की कांग्रेस सरकार थी उसने उसे बर्खास्त कर दिया। तो ये जो दुरुपयोग है 356 का, राज्यपाल की शक्तियों का, ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण रहा है। एक और बात होता है वो है नवीन राज्यों की मांग। देखिए, नवीन राज्यों की मांग मतलब नए राज्यों के गठन को लेकर काफी तनाव रहता है। जब राष्ट्रीय आंदोलन था उसने भारत की राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और जो हमारी संस्कृति है उस पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था डेफिनेटली। तो इस दौरान ये तय किया गया कि जो समान संस्कृति और भाषा है उनके आधार पर राज्यों का गठन होगा, मतलब जिनकी भाषा एक जैसी है, जिनकी संस्कृति एक जैसी है। तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1953 में एक आयोग का गठन हुआ जिसे कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की।
तो कुछ राज्यों का तो पुनर्गठन हुआ, जैसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक थे, दोनों की भाषा तो अलग अलग है, लेकिन 1960 में फिर गुजरात एक अलग प्रदेश बना, महाराष्ट्र अलग बना। उसके बाद पंजाब और हरियाणा भी अलग अलग हुए। पूर्वोत्तर के जो राज्य थे, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब का भी गठन हुआ। परंतु धीरे धीरे जो ये नए राज्यों की मांग है उसके लिए और डिमांड उठने लगी और कुछ बड़े राज्यों का विभाजन हुआ, खासकर 2000 में, जहाँ पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। और अभी भी कुछ राज्य हैं जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। अब है अंतरराज्यीय विवाद। ये भी एक मसला रहा है हमारे देश में कि ऐसा नहीं कि केंद्र और राज्यों के बीच में ही कुछ झड़प हुई है, विवाद हुए हैं। राज्यों राज्यों के बीच में भी विवाद हुए हैं और यहाँ पर भी जो मुख्य भूमिका है वो न्यायपालिका की ही आ जाती है। और इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, तो कभी कभी कोशिश की जाती है कि विचार विमर्श करके, आपस में बात कर इन मुद्दों को सुलझाया जाए। तो ये जो राज्य और राज्य हैं, इनके बीच में दो तरीके के मुख्य मुद्दे होते हैं। तो सीमा विवाद होता है, एक राज्य कहता नहीं ये भूमि मेरी है, दूसरा कहता है मेरी भूमि है। तो क्या होता है कि जो इनके सीमा के क्षेत्र होते हैं, है ना, जैसे आप तमिलनाडु को देखिए और आप फिर आगे जाके उसको आंध्र प्रदेश से अगर आप देखें या केरल से देखें, तो यहाँ पे भाषाएं अलग अलग हैं। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, लेकिन उदाहरण अगर देखिए कि अगर इनकी बाउंड्री एक है दोनों राज्यों की, तो एक हिस्सा ऐसा आता है जहां पर भाषा दोनों तरफ से लोग बोलते हैं, मतलब उन्हें एक से अधिक भाषा का ज्ञान होता है। कुछ लोगों को होंगे जिन्हें मलयालम भी आएगी और तमिल भी आएगी, तो ये लोग किस हिस्से में जाएंगे, इसको लेकर ये सीमा के विवाद होने लगते हैं। तो इसको तो देखिए, इस विवाद को केवल सिर्फ भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक है और उनके बीच भी एक क्षेत्र को लेकर विवाद है, वो है बेलगाम। तो अभी फिलहाल कर्नाटक में है बेलगाम, लेकिन महाराष्ट्र कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है। वैसे मणिपुर और नागालैंड में भी विवाद है, पंजाब हरियाणा में भी चंडीगढ़ को लेकर विवाद है। देखिए दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। तो ये जो विवाद है ये कभी कभी बढ़ जाते हैं, तो इनकी कभी कभी राज्यों में भी सहमति नहीं बनती। तो एक तो भूमि विवाद है, साथ में जल, नदियों के जल को लेकर भी बहुत विवाद होता है। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि कावेरी जल विवाद है जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो दोनों राज्यों के किसान इस नदी पर निर्भर हैं और अब ये दोनों कहते हैं कि नहीं ये जल मेरा है, वो कहता है मेरा जल है। तो इसके लिए एक नया न्यायालय टाइप भी बनाया गया है जिसको जल विवाद न्यायाधिकरण कहते हैं, पर ये मुद्दा उस समय भी नहीं सुलझा। अब ये सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए, तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोशिश की मुद्दे को सुलझाने की। और ये मुद्दा फिर नर्मदा नदी को भी लेकर है, उसके जल को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये भी आपस में थोड़ा सा इनमें झड़प होती रहती है। तो देखिए ये जो जल विवाद है या भूमि विवाद है, इसमें राज्यों को धैर्य रखना चाहिए और सहयोग की भावना रखनी चाहिए, तभी सारे राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने जाना कि इनमें क्या विवाद रहते हैं। और अब हम संघवाद में एक विशिष्ट प्रावधान जो दिए गए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारतीय जो संघवाद है उसकी सबसे विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। ये हम समझ गए, ये कब कहां से सीखा हमने, राज्यसभा में आपने देखा कि वहां पर प्रतिनिधित्व अलग तरीके से है। जो छोटे राज्य हैं उनको न्यूनतम प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो बड़े राज्य हैं उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। तो ये भी राज्यों में एक विशिष्ट सी बात है। तो जो शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदेश शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं,
जैसे आप पूर्वोत्तर के राज्य देखेंगे, खासकर असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, इनका देखिए अपना एक जनजातीय बहुल इलाका है ये, तो यहाँ की इनकी अपनी एक संस्कृति है, एक इतिहास है। क्यों ये राज्य थे, चाहते थे इनकी संस्कृति इतिहास बना रहे, तो इसीलिए यहाँ पे एक अनुच्छेद है 371 और इसके अनुसार इस भागों की संस्कृति और इतिहास को बनाए रखने का काम सरकारों का है। और क्या है कि ये जो प्रावधान है इस क्षेत्र के कुछ भागों में से अलगाववाद की भी बात भड़की, तो ये जो राज्यों में क्या होता है कि इनको खासकर अरुणाचल है, आप देखते होंगे कि चीन उसको अपने देश का पार्ट बताता है, कहता है ये हमारी संस्कृति का है, तो यहाँ पर एक अलगाववाद के हमें अलग होना, इस तरह की भावना भी कुछ लोगों ने भड़काने की कोशिश की कि आपके संग अगर आप भारत का हिस्सा नहीं है, आपकी संस्कृति अलग है, तो ये थोड़ा सा गलत चीज है। इसीलिए हमारे संविधान ने इन स्टेट को कुछ स्पेशल पावर दी है कि आप यहाँ के जो निवासी हैं वो अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखने के लिए उनको फ्रीडम दी गई है। और ऐसा और भी राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, इन सब राज्यों को कुछ कुछ स्पेशल प्रावधान दिए हैं, वो डिपेंड करता है उनको किस सिचुएशन में उसको यूज करना है। मैं एक प्रावधान एक राज्य के लिए है जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो है जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370। अभी रिसेंटली केंद्र में संसद ने उसको बिल को पास करके 370 जो धारा थी उसको हटा दिया गया है ना। तो ये जो 370 धारा थी उसमें जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल पावर था। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में आपको पता है कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ, और जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने भारत का चयन किया, और जो अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्य थे जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। तो इस स्थिति में जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन मुस्लिम की थी परंतु वो यही भारत का भाग बन गए, तो इसीलिए इस परिस्थिति को देखकर संविधान ने उनको थोड़ी सी फ्रीडम दी। तो ये जो अनुच्छेद था 370 उसके अनुसार केंद्र और संबंधित सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक है। ये थोड़ी सी स्थिति भिन्न है। देखिए जब केंद्र कोई भी निर्णय लेता है केंद्र सूची से बनाए या संबंधित सूची से बनाए तो उसको राज्यों पे ऑटोमेटिकली लागू कर दिया जाता है, परंतु जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर में लागू कराने के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा से सहमति लेनी पड़ती थी। तो जो राज्यों के लिए तीनों सूचियां हैं उसका जो शक्ति विभाजन था वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, और जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र को बहुत ही सीमित शक्तियां प्राप्त थी, और जो जम्मू कश्मीर है उसको ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता मिली। जो आर्टिकल 370 है उसके अनुसार संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्य सरकार की सहमति से तय करे कि केंद्र और संबंधित सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। तो जो राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से अब तक दो आदेश जारी किए हैं, इसके स्वरूप क्या हुआ है कि थोड़ा सा तो कुछ चेंज आया, परंतु जो जम्मू कश्मीर है उसका एक अलग संविधान भी था, उसका एक अलग ध्वज भी था, तो एक तरीके से देखा जाए जो एक तरीके से अलगाववाद की भावना को भी भड़काता है। ये कोई भी हमारे देश में राज्य ऐसा नहीं है जिसका अपना संविधान है, ध्वज, सब भारत के ही नागरिक हैं। तो ये एक अंतर था, और अगर वहां राज्य में कुछ भी करना चाहे केंद्र तो उसको वहां से अनुमति लेनी पड़ती, कोई भी कानून वहां लागू नहीं होता था। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर और था कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। अगर कुछ विद्रोह हो जाए देश में, है ना, कोई युद्ध हो जाए, कोई हम पर अटैक कर दे तो देश में आपातकाल लगता है, परंतु जम्मू कश्मीर में आपातकाल नहीं लग सकता था। तो ये जो मामला था वो भी बहुत ही गंभीर विषय था। कई लोग हैं उनका मानना था कि जो संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और समान विभाजन सब पर बराबर होना चाहिए, जो भी राज्य हैं वहां पर इस तरीके के प्रावधान नहीं होने चाहिए तो इस बात की भी शंका होती है कि ऐसे विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्र में अलगाववादी प्रमुखता के संग आगे बढ़ने लगते हैं। तो इनको लेकर विवाद था, आपने जम्मू कश्मीर के हालात देखे ही होंगे, परंतु अभी केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर का उसमें विभाजन भी हुआ है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी वही पूरे देश में जो पॉलिसी लागू होती है वही अब उसकी पॉलिसी लागू होंगी। ना तो अब उसका कोई अपना संविधान है, ना ही अब उसका कोई अपना ध्वज है। तो इस निष्कर्ष से अब हम यही पहुंचते हैं कि संघवाद एक धनुष है, इंद्रधनुष है, जहां पे प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन सब मिलकर एक सुंदर दृश्य उपस्थित करते हैं। तो संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है। कोई भी कानूनी या संस्थानिक फॉर्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप कार्य करने की गारंटी तो नहीं दे सकता। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को आपसी सहयोग, सहनशीलता और सहयोग की भावना पर आधारित कार्य करने चाहिए, चाहे वो संस्कृति के कार्य हो, मूल्यों के कार्य हो। पहले भी हमने कहा संघवाद में एकता और अनेकता दोनों का आदर होना चाहिए। विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते कि हम अलग अलग हैं तो सब मिलकर, नहीं, हमें अपनी संस्कृति को भी बचा के रखना है और एकता के साथ भी रहना है। तो विभिन्नताओं और स्वायत्ताओं की मांग के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है। तो ये जो संघवाद है इसमें आपसी सहयोग और विश्वास इसकी नींव का काम करते हैं। राज्य और केंद्र के बीच में सहयोग बना होना चाहिए। फाइनली सबको ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम एक हैं, कि जो एकता की भावना है वही संघवाद की भी भावना है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये कुछ प्रश्नावली दी है, ये जो क्वेश्चंस है ये काफी डिटेल है दिखने में, परंतु एक एक मात्र एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं और आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि किस तरीके से हमने जो अभी संघवाद को पढ़ा है उससे हम क्या समझ पाए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्न एक है, नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी गई है, इनमें से किसको आप संघवाद की कार्य प्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? पहले मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। क, केंद्र सरकार ने मंगलवार को GNLF के नेतृत्व वाली दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिलिंग को छठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। ख, वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकार कार्य योजना लाएगी। ग, दिल्ली के लिए नए आयुक्त। घ, मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। ड, केंद्र ने धन दिया। च, हम बिहारियों को बताएंगे कि मुंबई में कैसे रहना है। और आखिर में छह, सरकार को भंग करने की मांग। और उसके बाद NDA सरकार ने नक्सलियों से हथियार रखने को कहा। तो ये उदाहरण है, इनमें से हमें बताना है, जो एग्जाम्पल दिए हैं कि इनमें से संघीय व्यवस्था कौन कौन सी, किस उदाहरण को देखकर आपको संघ की व्यवस्था होने का एहसास है। तो देखिए, ये जो उदाहरण है उसमें क में तो वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक व भौगोलिक समीपता के आधार पर स्वायत्तता का निर्माण कर शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है, जिससे जो निश्चित क्षेत्र है वहां के स्थानीय लोगों की इच्छा और उनकी जो अपेक्षा है उसके अनुसार विकास हो सके। ख में भी वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति है, जिसमें केंद्र उन राज्यों से व्यय का वितरण मांग रहा है, विवरण मांग रहा है जो वर्षा से प्रभावित हुए हैं, ताकि उन्हें सहयोग राशि दी जा सके। उसके बाद आखिर में ड, यहाँ पर भी वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति है, क्योंकि इसमें भी अरुणाचल प्रदेश की जो पानी की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था की गई है। अब प्रश्न दो देख लेते हैं। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा और क्यों? पहले मैं कथन पढ़ देती हूँ। क, संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग मेलजोल से रहेंगे और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी। ह, अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन को संघीय प्रणाली से बाधा पहुंचेगी। ग, संघीय प्रणाली बात को सुनिश्चित करती है जो केंद्र में सत्तासीन है उनकी शक्तियां सीमित रहें। तो ये जो क है वो तो सही है, क्योंकि संघीय प्रणाली में सभी को अपनी संस्कृति का विकास करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है, उन्हें कोई भय नहीं होता है और ये बिल्कुल नहीं उनपे उनको इस तरीके से लगता है कि उनपे किसी की संस्कृति लाद दी जाएगी। तो क सही है और ग तो नहीं, दूसरे बात का ख है वो सही नहीं है। और ग को हम देखें जो तीसरा कथन है ग वो भी सही है, क्योंकि संघीय प्रणाली में शक्तियों का केंद्र व राज्यों में बंटवारा करके केंद्र की शक्तियों को सीमित किया जाता है। तो ये हम समझ गए ये दो प्रश्नों से। तीसरा प्रश्न आप खुद करेंगे क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, हमारे पास एक समय सीमा है जिसके अंतर्गत हमें कार्य करना है। तो मैं प्रश्न 4 ले लूंगी कि कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं और जिससे लगभग 300 शब्दों का एक लेख लिखना है जिसमें ये बिंदुओं को आपको सुझाव लेने हैं। केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विश्व संसाधनों का वितरण और राज्यपालों की नियुक्ति। तो ये प्रश्न भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप खुद पढ़कर लिखने का प्रयास करेंगे। हम अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत गठन के आधार होना चाहिए और क्यों? कौन से मतलब इसमें से कारण होने चाहिए जिनकी वजह से एक राज्य का गठन हो सकता है? क, सामान्य भाषा। ख, सामान्य आर्थिक हित। ग, सामान्य क्षेत्र। घ, प्रशासनिक सुविधा। तो भाषा का आधार जो है वो तो 1956 से एक आधार रहा है राज्यों के गठन का, तो भाषा तो कारण है ही, परंतु वर्तमान समय में प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है। खासकर जो मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ था, जो छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना, वो कोई भाषाई आधार नहीं था, वो प्रशासनिक सुविधा हो, क्योंकि बड़े राज्य हैं वहां पर प्रशासन अच्छे से नहीं चल सकता, इसीलिए उनका विभाजन किया गया। प्रश्न 6। उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ये संघवाद के विचार से संगत होगा? तर्क दीजिए। देखिए, यदि उत्तर भारत की जो प्रदेश है जहां सब एक ही हिंदी भाषा बोलते हैं, तो अगर इनको सभी को मिला दिया जाए तो भाषाई व सांस्कृतिक दृष्टि से तो वो एक इकाई के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं, परंतु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े राज्य को चलाना बहुत ही एक प्रशासनिक विफलता वहां पर हो सकती है। तो ये हमने कुछ प्रश्न किए हैं और एक आखिरी प्रश्न और ले लेते हैं कि प्रश्न 7। भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिनमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। तो जो 4 प्रावधान हैं उनको आप देख सकते हैं कि पहला तो हुआ कि केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन, शक्तियां ज्यादा हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और जो प्रशासनिक सेवाएं हैं अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये हमने संघवाद को समझ लिया है। बाकी के प्रश्न आप फिर से इस चैप्टर को सुने, उसको हल करने का कोशिश करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, इसीलिए हम उनको नहीं करते, और इनके उत्तर आपको डायरेक्टली किताब में भी मिल सकते हैं। किताब को एक बार पढ़ने के बाद, इस ऑडियो को सुनने के बाद, आप कोशिश कीजिए कि आंसर्स आप अपनी खुद की भाषा में लिखिए। तो एक तो आपकी भाषाई अभिव्यक्ति भी बढ़ेगी और आपको खुद पता चलेगा कि हमने कितना समझा। जो समझ कर आप चीज को लिखते हैं उसको आप भविष्य तक उसको याद करके रख सकते हैं। तो आज ये हमारा संघवाद का टॉपिक खत्म होता है। और अब मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक थैंक यू वेरी मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।